दिन यूं ही गुजरने लगे। इस हादसे को एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। 3-4 दिन बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गए तो स्टूडियो में फिर से रिहर्सल शुरू हो गई। वहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि शान की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उस हादसे के पीछे कौन था, ये अब तक एक सवाल ही बना हुआ था। आरवी की अर्जुन और अनुपमा जी दोनों से बात होती थी। अनुपमा जी को अभी भी कुछ नहीं पता था। उन्हें यही लगता था कि आरवी अपनी जिंदगी में, अपनी गृहस्थी में बहुत खुश है। अर्जुन ने भी अपने तरह से जांच करवाई थी, क्योंकि उसे शक था कि इस हादसे के पीछे वही है जिसके वजह से आज दोनों परिवारों के बीच इतनी गहरी दुश्मनी पनप चुकी है। पर अब तक उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा था। आज एक बार फिर शुरू से हर सीन की रिहर्सल की जा रही थी और सारा दिन उसी में बीत गया था। सुबह से ही मौसम खराब सा था, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी हो गया था, इसलिए जल्दी ही रिहर्सल खत्म करके सब वहां से चले गए। शान वीडियो कॉन्फ्रेंस पर एक मीटिंग अटेंड कर रहा था और आरवी उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्हें साथ ही घर जाना था। कुछ देर में जैसे कि चेतावनी थी, बाहर तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। पहले भी एक बार ऐसा ही तूफान उठा था जिसका असर अब तक भी आरवी की जिंदगी पर देखा जा सकता था, और अब एक और तूफान आ चुका था। अब देखना ये था कि ये तूफान क्या करने वाला था। शान की मीटिंग खत्म हुई तब कहीं जाकर वो अपने चेम्बर से बाहर निकला। रिहर्सल हॉल में आरवी अकेली बैठी घर पर बात कर रही थी और साथ ही बाहर होती झमाझम बारिश को देख भी रही थी। शान बाहर आया और एक नज़र उसे देखने के बाद बाहर निकलते हुए बोली, जल्दी बाहर आओ। आरवी ने उसकी आवाज़ सुनी तो निगाहें घुमाकर उसे देखा और फिर झट से फ़ोन काटकर उसके पीछे चली गई। स्टूडियो की बिल्डिंग से बाहर ही घुटने तक पानी भर चुका था। बादल जोरों से गरज और बरस रहे थे। मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल रही थी। ऐसे में बाहर जाना बेवकूफ़ी ही थी। वहां मौजूद गार्ड ने शान को आज यहीं रुकने की सलाह दी, क्योंकि जब यहां इतनी सी देर में इतना पानी भर गया था, जबकि यहां पानी के निकलने का अच्छा अरेंजमेंट था, तो फिर मुंबई की सड़कों का क्या हाल होगा, यह अनुमान लगाया जा सकता था। पानी में गाड़ी भी बंद पड़ सकती थी, इसलिए गार्ड ने उन्हें यहीं रुकने की सलाह दी। पर आरवी को वापस जाना था, क्योंकि वहां अंशु उसका इंतजार कर रही थी। शान ने गाड़ी निकाली और दोनों वहां से निकल गए। जाते हुए शान ने गार्ड्स और वॉचमैन को भी अपने क्वार्टर में जाने को कह दिया, जो पास में ही था। जैसा ही अंदाजा था, मुंबई की सड़कें तालाब बन चुकी थीं और सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां अब पानी में तैरती हुई नजर आ रही थीं। कुछ पानी में बंद भी हो चुकी थीं। शान की कार भी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। कुछ देर जाने के बाद शान को गाड़ी रोकनी पड़ी। तूफान की वजह से पेड़ गिर गए थे, जिससे आगे का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। वहां गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि बस यहां का हाल ऐसा था। सारी मुंबई कुछ ही देर में जलमग्न हो चुकी थी और फोन पर अलर्ट आ रहा था कि जो जहां है वहीं रहे, घरों से बाहर ना निकले। शान कार साइड में रोककर खड़ा हो गया और आगे क्या किया जाए ये सोचने लगा। आरवी ने सामने देखा, फिर शान की तरफ निगाहें घुमाते हुए बोली, वापस चलते हैं, यहां से घर बहुत दूर है, बारिश भी बहुत तेज है, नहीं पहुंच पाएंगे। बेवजह यहां फंसे रहने से अच्छा है कि वापस चलते हैं। जब बारिश रुक जाएगी और मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा तो घर चले जाएंगे। मैं बड़ी माँ को बोल देती हूँ कि हम स्टूडियो में ही रुक रहे हैं, तो वो चिंता ना करें और अंशु का ध्यान रखें। शान को भी उसका आइडिया ठीक लगा, क्योंकि स्टूडियो से घर काफी दूर था, जबकि जहां वो था वहां से वापस स्टूडियो पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो कुछ ही दूर आए थे। शान ने कार वापस घुमा ली। कुछ देर में वो वापस स्टूडियो पहुंच गए। बाकी सबको शान भेज चुका था, तो अब वही दोनों थे वहां। शान ने लॉक खोला और दोनों अंदर आकर बैठ गए। बचते बचते भी वो कुछ भीग गए थे, तो आरवी अपने दुपट्टे से अपने गीले बदन को पोंछने लगी, फिर अपने जुड़े को खोलकर बालों को झटकते हुए सुखाने लगी। शान उसके सामने एकदम स्थिर बैठा हुआ था। निगाहें फोन पर टिकी थीं, पर ध्यान पूरा सामने खड़ी आरवी पर था, जो भीगी हुई सी बिल्कुल जलपरी जैसी लग रही थी। हमेशा से ज्यादा दिलकश लग रही थी वो इस वक्त। शान चाहकर भी उस पर से नजरें नहीं हटा पा रहा था। कुछ देर बाद आरवी शान के सामने बैठ गई। उसे फोन में डूबे देखकर उसने भी अपना फोन निकाल लिया, पर जहां शान का ध्यान फोन पर ना होकर आरवी पर था, वही आरवी किसी और ही सोच में गुम थी। शान कुछ देर उसको खामोशी से देखता रहा, फिर फोन में निगाहें टिकाए हुए ही बोला, बारिश कब रुकेगी उसका कोई पता नहीं है, तो हो सकता है शायद हम आज घर भी ना जा सके, तो अगर तुम्हें भूख लगी हो तो कैंटीन जाकर देख लो, खाने को कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। आरवी के कानों में शान की आवाज पड़ी तब कहीं जाकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने निगाहें उठाकर शान को देखा, फिर इनकार में सर हिलाते हुए बोली, मुझे अभी भूख नहीं है, अगर आपको कुछ खाना हो तो बता दीजिए, मैं बना दूंगी। नहीं, मुझे भी कुछ नहीं खाना, शान ने तुरंत ही बिना आरवी को देखे ही इनकार कर दिया, तो आरवी ने सर हिला दिया, पर उस पर से निगाहें नहीं हटाई, बल्कि उसे देखते हुए कुछ सोचने लगी। शान भले अब उसे नहीं देख रहा था, पर उसको आरवी की निगाहों का खुद पर टिके होने का एहसास था। कुछ देर तो वो उसे नजरअंदाज करता रहा, फिर भी जब आरवी ने उस पर से निगाहें नहीं हटाई तो आखिर में शान ने निगाहें उसकी तरफ उठा दी और भौं उचकाते हुए सवाल किया, क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो जो इतनी देर में मुझे घूरे जा रही हो? शान की बात सुनकर भी आरवी ने उस पर से निगाहें नहीं हटाई, पर झट से बोल पड़ी, मैं आपको घूर नहीं रही बल्कि कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो मुझे देखकर? शान ने भौं सिकोड़ कर उसे देखा। आरवी अब कुछ पल खामोश हो गई, फिर गंभीरता से बोली, काफी वक्त से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ पर कभी मौका नहीं मिला, तो जब मौका मिला तो समझ नहीं सकी कि बात शुरू कैसे करूं, इसलिए कभी कह नहीं सकी। अगर इजाजत हो तो आज वो बात आपसे कह दूं। आरवी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। शान ने कुछ पर उसके चेहरे का मुआयना करने के बाद उसे कहने का इशारा कर दिया। आरवी ने एक गहरी सांस छोड़ते ही गंभीरता से कहना शुरू किया, जानती हूँ ठाकुर साहब से आप बहुत नफरत करते हैं और मैं कभी आपके और उनके बीच नहीं आऊंगी। सालों पहले क्या और कैसे हुआ और जो हुआ उसके पीछे असली गुनाहगार कौन है, मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए कुछ कहूंगी भी नहीं। पर काफी वक्त से मैं आपसे ये बात कहना चाह रही थी कि आपको लगता है कि मॉम ने ठाकुर साहब के साथ मिलकर डैड को चीट किया है, पर मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। आरवी की बात सुनकर शान की भौंहें इकट्ठी हो गई, चेहरे पर कठोर भाव आ गए और वो गुस्से से आरवी को घूरने लगा, जबकि आरवी ने बिना उसके रिएक्शन पर कुछ खास ध्यान दिए अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, देखिए मैं यूं ही कुछ भी नहीं कह रही और ना ही आपको गलत ठहरा रही हूँ, बस जो मैंने देखा और महसूस किया उसी के आधार पर यह कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि उस बात में कोई सच्चाई है। मैं जब ठाकुर निवास गई थी तो मैंने वहां माँ की तस्वीर देखी। भैया भी कह रहे थे कि ठाकुर साहब आज भी माँ को बहुत याद करते हैं, उन्होंने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, बहुत प्यार करते हैं वो माँ से। अगर ठाकुर साहब ने माँ को धोखा दिया होता तो उनकी यादों को इतना संभाल कर नहीं रखते, उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करते।
अगर मॉम और उनका कोई नाजायज रिश्ता होता तो वो मॉम के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे होते, पर ऐसा नहीं है। अगर माँ ने डैड को चीट किया होता तो वो ठाकुर साहब के साथ होती, पर वो उनके साथ नहीं है। इनफैक्ट जब से डैड और उनके बीच दूरी आई है उन्होंने मॉम को देखा तक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ठाकुर साहब ने मेरी माँ को और मॉम ने डैड को धोखा दिया है या कभी उनके बीच कोई नाजायज रिश्ता था। आरवी अपनी बात कहकर अब खामोश हो गई और अपनी उंगलियों को आपस में उलझाए उसके रिएक्शन का इंतजार करने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बात सुनकर शांत शांत तो बिल्कुल नहीं रहेगा और आरवी खुद को उसके कोप को सहने के लिए तैयार कर रही थी। इतने वक्त से वो सबूत ढूंढ रहे थे पर कुछ हाथ ही नहीं आ रहा था। ऐसे में आरवी ने अपने तर्कों का सहारा लेना चाहा, जिससे शान को सोचने पर मजबूर किया जा सके और वो अपनी आंखों पर बंधी नफरत की पट्टी को हटाकर देखे ताकि उसे भी वो सच नजर आ सके जो वो देख पा रही थी। जैसा ही आरवी को अनुमान था, उसकी इतनी सी बात सुनकर शान गुस्से से भड़क उठा। किसने बताई तुम्हें ये बात? शान की आवाज़ इतनी तेज और कठोर थी कि आरवी का जिस्म कांप उठा, पर उसने अपनी घबराहट को काबू पाते हुए संयमित स्वर में कहा, आपसे पूछा पर आपने नहीं बताई, तो अब मैंने खुद से पता लगाया, और जब आपने नहीं बताया तो मुझे किसने बताया ये भी जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आरवी जैसे ही अपनी बात कहकर खामोश हुई, शान एकदम से उठकर खड़ा हो गया और गुस्से से चीखा, मैंने पूछा किसने बताई तुम्हें ये सब बातें? आरवी भी उठकर खड़ी हो गई और शांत लहजे में बोली, किसी और की बताने की ज़रूरत ही क्या है? क्या आपको मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ लगती हूँ कि अपनी आँखों के सामने मौजूद सच्चाई को न सके देख सकूँ? आपने भले मुझे कुछ न बताया हो, पर दिमाग है मेरे पास भी, चीज़ों को देखने और समझने की क्षमता भी है। शक तो मुझे पहले दिन से था और जैसे जैसे वक्त बीतता गया मेरा शक यकीन में बदलता गया। आपने छुपाने की बहुत कोशिश की पर सच्चाई मुझसे छुप नहीं सकी। आरवी ने उसके बाद एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आप इतने दिनों से जो रिहर्सल करवाते हैं ना, वो सिर्फ एक कहानी की स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और दर्दनाक हकीकत है, और आप उसे दुनिया के सामने लाकर मेरे ही हाथों ठाकुर साहब का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, और इसलिए आप ये अब कर रहे हैं। सही कहा ना मैंने? आरवी के मुँह से ये बातें सुनना शान के लिए किसी शौक से कम नहीं था, पर ठीक ही कह रही थी वो। रिहर्सल में अब उनकी ही बीती और अब की ज़िंदगी को दोहराया जा रहा था, तो आरवी के लिए ये सब समझना कोई मुश्किल काम नहीं था। ध्यान देने पर यह हकीकत सामने आ सकती थी, इसलिए शान ने अब बाकी संभावनाओं को खत्म कर दिया और मान लिया कि आरवी सच कह रही है।